मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। समय सार परमागम की आठवीं गाथा आरंभ करनी है। सातवीं गाथा में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तक पहुंचाने के लिए चारों प्रकार के व्यवहार का निषेध किया, तो शिष्य के हृदय में प्रश्न खड़ा हुआ कि यदि ऐसी बात है तो जनवाणी में व्यवहार नयों का कथन ही क्यों किया गया है, अकेला एक निश्चय ही बताना था। इसका हेडिंग में ये लिखा है, तरही परमार्थ एव एको वक्तव्या इति चेत। फिर अकेला परमार्थ ही बताते, पहले तो आपने व्यवहार बहुत विस्तार से बताया और फिर अब कह रहे हो कि व्यवहार में उलझो मत, अपने परमार्थ में जाओ, उनका निषेध करते हो बड़ी दृढ़ता से। शास्त्र में तो बड़ी निर्दयता से इस शब्द का प्रयोग किया है, दृढ़ता से नहीं निर्दयता से, ऐसा क्यों है? तो उसका उत्तर उन्होंने आठवीं गाथा में दिया है कि जहन अभिषक मण जो अनज्य भाषम बिना दुगाहेदुम, तह व्यवहारे न बिना परमत्वपदेशमसक्कम। कहते हैं जिस प्रकार अनार्य व्यक्ति को अनार्य भाषा के बिना समझाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश नहीं दिया जा सकता, इसलिए जिनवाणी में व्यवहार का कथन है। इस चार अब यहां से गाथाएं शुरू होंगी, 8, 9, 10, 11 और 12 तक भी समझ लीजिए, ये सब नयों की चर्चा करने वाली गाथाएं हैं। एक तरह से तो सातवीं में भी नयों की ही बात आई ना, छठवीं सातवीं में भी, लेकिन वहां वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा इतना मुख हो गया, हावी हो गया कि हम इसे नयों का प्रकरण नहीं कह सकते, है ना? तो वहां भी उपचरित सद्भूत व्यवहार नय का निषेध छठवीं गाथा में किया और सातवीं में अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय का निषेध किया। इस प्रकार अशुद्ध सद्भूत और शुद्ध सद्भूत दोनों नयों का निषेध कर दिया, तो वो उसी की तो हुई ना, नयों की बात तो हुई। माने ये सारी समय सार की बात आरंभ करने के पहले आचार्य कुंद कुंद को लगा कि नयों की बात समझाए बिना समय सार समझाया नहीं जा सकता। आचार्य देवसेन का नए चक्र है जो बहुत प्रसिद्ध था पहले, क्या नाम, सुप्त भवन दीपक, उसका नाम क्या है, सुप्त भवन दीपक नए चक्र, क्या अर्थ है उसका, सुप्त माने जिनवाणी द्वादशांग, उसका जो मकान, उसमें जो मकान में जो दीपक का काम करे, इतना बड़ा जिनागम है, उसका भवन है और उसमें मैं एक दीपक रख रहा हूं, इसमें उसमें उजेला पड़े, शुद्ध भवन दीपक नए चक्र। एक नए चक्र माइल्य धवल का उपलब्ध है और उसका नाम क्या है, दिव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र। मतलब दिव्य का स्वभाव क्या है उसका प्रकाश करने वाला नए चक्र है, और वो नाम इसलिए ज्यादातर मुख्यता से सार्थक है कि उसमें द्रव्यार्थ पर्यार्थक नय की मुख्यता से द्रव्य का स्वरूप प्रमाण का स्वरूप बहुत विस्तार से बताया, और अकेले नयों की चर्चा नहीं है, नयों का तो एक चैप्टर है, उसमें तो 12 चैप्टर है, इसलिए वस्तु के स्वरूप का भी प्रतिपादन है, फिर भी उसका नाम उन्हें नए चक्र रखा, यानी उनके दिमाग में भी वो नयों वाला अध्याय इतना हावी था कि उसका नाम उन्होंने नए चक्र रखा। पूज्य गुरुदेव श्री ने जो भी नयों की चर्चा की वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जगत के सामने प्रस्तुत करने के लिए की, और उस समय जो भी नयों की चर्चा चलती थी उसका मेन आधार मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो सातवें अध्याय में थोड़ी बहुत नयों की चर्चा है वही मुख्य आधार रहता था। थोड़ा बहुत नौवां अध्याय भी मोक्ष मार्ग दो तो है नहीं, वैसे तो ज्यादा ना चर्चा उसके आधार पर भी निश्चय व्यवहार की चर्चा चलती थी। दिव्यार्थ पर्यार्थ की तो बात ही नहीं थी, नई गांधी की चर्चा भी अपने अध्यात्म में नहीं करते थे। तत्वा सूत्र में होने से विद्यालयों में तो पढ़ाया जाता था, राजवार्तिक सर्वार्थ सिद्धि उनकी चर्चा आती थी। और सचमुच ये परिस्थिति बनी सारे देश में कि निश्चय व्यवहार के नियमों का जो स्वरूप नहीं समझने के कारण बहुत झगड़े खड़े हुए और गांव गांव में स्वामी जी और स्वामी जी के विरोध में जो पार्टियां खड़ी हुई उनके नाम रखा गया निश्चय पार्टी और व्यवहार पार्टी। और निश्चय अब ये निश्चय का सिद्ध लग रहा है और ये व्यवहार का सिद्ध लग रहा है, है? अब निश्चय वाले व्यवहार वाले के यहां अपनी बेटी नहीं देंगे और व्यवहार वाले निश्चय वाले को अपनी बेटी नहीं देंगे, इस लेवल तक बात पहुंची। बिल्कुल इसी नाम से झगड़ा हुआ। इसी बीच मेरे पास आत्म धर्म आया। मैं दो मिनट की बात कहता हूं आपको जरा थोड़ी इसकी भूमिका के लिए। तो मेरे दिमाग में ये था कि जो समाज में झगड़ा हो रहा है तो उसकी जो मेरे दिमाग में रिसर्च हुई वो ये हुई कि एक तो नयों का स्वरूप सही नहीं समझने के कारण हो रहा है, और क्रमबद्ध पर्याय को भी उतने सशक्त तरीके से प्रस्तुत नहीं किया जा सका है कि जिसकी वजह से इतना विरोध हो रहा है। यदि उसे सशक्त तरीके से प्रस्तुत किया जाए तो उसका विरोध मिट सकता है, और एक निमित्त उपादान की वजह से झगड़े हैं। तो इन झगड़ों के निपटाने के लिए क्या किया जाए? जब सबसे पहले आत्म धर्म मेरे पास आया तो सबसे मेरा बहुत बहुचर्चित चिंतित विषय था धर्म के दस धर्म, और उस पर मेरी बहुत प्रशंसा होती थी। जहां जहां जाता था प्रवचनों में पादनी जी वगैरह कहते थे इसे लिख दो इसे लिख दो, तो सबसे पहले तो मैंने वो शुरू किया सिर्फ अपने पैर जमाने के लिए, क्योंकि मैं कठिन विषय शुरू कर देता तो हो सकता उसी वक्त पैर उखड़ जाते है? और उसका और गुरुदेव से मैंने 5 इंटरव्यू लिए उनके विरोध में मिटाने के लिए, चेतन चमत्कार में वो छपे आपने देखे ना, सचमुच उसका जादू जैसा असर हुआ और समाज के बहुत भ्रम भंग हुए। तो जब दस लक्षण खत्म होते ही मैंने क्रमबद्ध पर्याय, और मेरे मन में ये थी कि निश्चय व्यवहार के मामले में खासकर मुकुंद भाई अपने मुमुक्षुओं में भी बहुत वो था, मतभेद थे, तथ्य नहीं थे, बिल्कुल गड़बड़ लगती थी, और स्पष्ट नजर आता था कि इनकी समझ में भी पूरी तरह से निश्चय व्यवहार आए नहीं है। तो बाद में यदि हमने ये निश्चय व्यवहार की बात लिखी और गुरुदेव चले गए हमारे बीच में से और उनके सामने नहीं आ पाई और कन्फर्म नहीं हो पाई तो हम कितनी मेहनत करके लिखें ये मुमुक्षु हमारी बात मानेंगे नहीं, और विरोधियों के तो मानने का सवाल ही नहीं है, उसका लाभ नहीं होगा। इसलिए गुरुदेव की उपस्थिति में नए नयों के बारे में लिखा जाना चाहिए। मेरी दृष्टि में नयों के बारे में लिखने के लिए सबसे पहला अध्याय दिव्यार्थिक पर्यार्थिक नय का होना चाहिए, क्योंकि वे आगम के नये हैं और वे अध्यात्म के नये हैं, और अध्यात्म नयों की नींव आगम के नयों के आधार पर खड़ा होता, अध्यात्म का महल आगम के नयों के आधार पर खड़ा होता है। तो बिल्कुल क्रम ये था, यही होना चाहिए था, और पहले के नए चक्रों में ऐसा कुछ था भी। अध्यात्म के नए नाम से कह के अंत में थोड़ा सा लिख दिया था, देवसेन में देखो और में देखो, महल धवल में भी। तो मैंने निश्चय व्यवहार का शुरू किया कि गुरुदेव की उपस्थिति में ये काम हो जाए और कम से कम गुरुदेव की सील लग जाए तो कम से कम मुमुक्षु तो कम से कम एक मोर्चा तो बंद होगा क्या? इसलिए मैंने उस मर्यादा को भंग करके निश्चय व्यवहार पर लिखना शुरू किया। तो ये बहुत परम सौभाग्य की बात है कि मुझे गुरुदेव श्री के सामने वो अपना नए चक्र पढ़ाने का भी मौका मिला और उस क्लास में गुरुदेव श्री विराजे। बिल्कुल कन्फर्म हो गई वो बात, आत्मधर्म में छप गई वो सब जगह एक एक बात में, और गुरुदेव के सामने आ गई। तो आज एक आराम है कि उन पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा सकता। और मैंने उसका नाम रखा परम भाव प्रकाशक नए चक्र, क्योंकि परम भाव माने वही दृष्टि का विषय भू जो भगवान आत्मा है। क्या वो परम भाव शब्द जो भी आता है अभय कुमार जी, वो निश्चय व्यवहार में नहीं आता, वो आता है द्रव्यार्थिक पर्यार्थक में। द्रव्यार्थिक नय का जो दसवां भेद है ना, परम भाव ग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, उसमें आता है। तो इसलिए मैंने पहले कौन सा था, श्रुत दीप भवन दीपक नये चक्र और द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नये चक्र, और मैंने रखा परम भाव प्रकाशक नये चक्र। इसलिए भी क्योंकि जो परम शुद्ध निश्चय नये तक हम पहुंचना है ना, तो उसके लिए वो जरूरी था। गुरुदेव के सामने भी ये रखा गया। अब एक जो बहुत बड़ी तकलीफ खड़ी हुई, गुरुदेव श्री ने जब 19वीं बार समय सार पर प्रवचन किया, मेरी बात सुनना, बहुत बीमार में गए, इसके लिए मैंने इतनी कहानी सुनाई पुरानी, इसलिए भी सुनाई कि ये कैद हो जाए तो भविष्य में आपको इसकी ऐतिहासिक जानकारी भी रहे, कि उन्होंने जो 21वीं बार प्रवचन किए 19वीं बार और वो छपे प्रवचन रत्नाकर के रूप में, तो जब वे 11वीं गाथा का अर्थ कर रहे थे और जिसमें लिखा है अभूतार्थ है व्यवहार न व्यवहारो भूयत्थो भूयत्थो दुष्णो शुद्ध नयो, तो जब उन्होंने वहां व्यवहार नय की व्याख्या की तो व्याख्या को पंचाध्यायी के आधार पर कर दिया, क्योंकि उस वक्त उनके स्वाध्याय में पंचाध्यायी चल रही होगी। अरे कुमार जी, आपको भी ये बात समझाना बहुत जरूरी है। उससे क्या हुआ कि वो पंचाध्यायी वाले नए वो अध्यात्म में बहुत प्रचलित हो गए। कौन कौन से? वो बुद्धिपूर्वक राग, अबुद्धिपूर्वक राग, वो सब अपन ने पूरा एक चैप्टर लिखा उसके लिए, अलग से लिखा पंचाध्यायी के नए। लेकिन वो आचार्य कुंद को मानने नए नहीं है, घबराना नहीं बताना। आचार्य कुंद के मानने जो नए हैं वो देवसेन के नए चक्र में हैं, वो माइल धवल के नए चक्र में हैं। वो देवसेन ने तो स्पष्ट शब्दों में लिखा कि आचार्य कुंद की वाणी से ग्रहण करके मैं ये नए चक्र लिख रहा हूं, ऐसा स्पष्ट शब्द में है उनके बिल्कुल संस्कृत में कि मैं कुंद आदि आचार्यों की वाणी के आधार पर ये नए चक्र लिख रहा हूं। अब वो डिटेल क्या है वो मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो मेरी बात रह जाएगी। लेकिन ये आप समझ लीजिए कि उससे क्या नुकसान हुआ कि लोगों की जमान में तो वो रहते थे और जब अपने निश्चय व्यवहार आए तो वो उनको अस्वीकृत हुए। बहुत लोगों तो समझते नहीं है, लेकिन एक उदाहरण देना चाहता हूं कि मैं हिम्मतनगर में प्रवचन कर रहा था और जब चार प्रकार के व्यवहार में मैंने ये समझाया जो आपको समझाए थे 2-3 दिन पहले, तो 20 सभा में रमण मामा बोले कहने ये गलत है। रमण मामा का मतलब समझ गए ना, वो बाबू भाई का मामा, तो वो शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर थे। रिटायर होने के बाद में उन्हें सबने काम सौंपा प्रवचन रत्नाकर का गुरुदेव की वाणी से लिख करके, तो उनने बेचारों ने वो ही पढ़े थे तो वे उनके दिमाग में ताजा थे और ये बिल्कुल उनको अटपटे लगे, तो उन्होंने एकदम भरी सभा में कहा। तो फिर मैंने वो सब समाधान भी किया, वो सब बात हो गई कि क्या फर्क है। तो मैं ये कहना अभी भी आपको वो तकलीफ खड़ी हो सकती है कि वो जो पंचाध्यायी के नए हैं उनके बारे में ज्यादा कमेंट्स में नहीं करना चाहता हूं, लेकिन पूरे आगम के नए एक तरफ और पंचाध्यायी के एक तरफ बस, माने वो अकेले पंचाध्यायी में है, न बाद में लोगों ने अनुकरण किया उनका और न पहले। समझ गए ना आपकी ने? तो ये जो अपना नए चक्र है इसमें अपन ने बराबर पूरा आचार्य कुंद कुंद की परंपरा वाला नए चक्र लिखा है, और फिर बाद में किसी को भ्रम ना रह जाए तो एक पूरा चैप्टर पंचाध्यायी के नए के नाम से अलग लिखा और उनका कंपरेटिव स्टडी की। ये इतिहास बताने का उद्देश्य ये है कि ये जो नए चक्र अपने का नए चक्रों का जो इतिहास है, जब नए चक्र सामने आया तो निश्चित रूप से ये सारे झगड़े देश में खत्म हो गए। क्रमबद्ध पर्याय, निश्चय व्यवहार और ये सब निमित्त उपादान संबंधी, अब जो झगड़ा है वो व्यक्तिगत झगड़े हैं, अंदर और बाहर दोनों, हम बिल्कुल सैद्धांतिक झगड़े नहीं है। एक लेख पिछले 20 साल में क्रमबद्ध पर्याय के विरुद्ध आया हो किसी अखबार में तो बताओ, और उसके पहले देखो फरार पड़ा रहता था। एक लेख निश्चय व्यवहार के विरुद्ध आया हो तो बताओ, एक लेख निमित्त उपादान की चर्चा पे आया, कुछ नहीं। अब तो उस दे बातें रह गई हैं कि अस्पताल में गए फलाना हुआ, ये हुआ, बे हुआ, जे ए नहीं मानते, न नहीं पूजना बनाई, मैंने मतलब जो झगड़े के मुद्दे हैं उनमें कुछ दम नहीं रह गया है। क्या वो प्योर व्यक्तिगत हैं, बहुत प्रभावगत हैं, और अंदर बाहर दोनों जगह अब सैद्धांतिक झगड़े रहे ही नहीं। नए चक्र पर आज तक किसी मुमुक्षु ने प्रश्न वाचक नहीं लगाया, निमित्त उपादान पर किसी ने, क्रमबद्ध पर्याय पर किसी ने प्रश्न वाचक नहीं लगाया, समय सारण शीलन पर भी नहीं लगाया। व्यक्तित्व से जलने वाले लोगों ने थोड़ा बहुत जरूर, क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी, कल में आई ना, बस ऐसे प्रश्न जरूर किए। एक पंक्ति में, एक अक्षर में एक कहां गलती है, एक किसी ने आज तक नहीं बताया, आज भी हम कहते हैं बताएगा, तो उसका पूरा सम्मान करके वो आगम के आलोक में फिर जैसी आवश्यकता होगी वैसा सुधार कर लेंगे। ये तो आठवीं गाथा है, अब यहां से उसमें ग्यारहवीं भी आएगी और उसकी अपने को चर्चा आरंभ करनी है। इसलिए मैंने इतनी बात बताई कि चारों प्रकार के नियमों का यहां पर हमने निषेध किया है। कुंद कुंद नहीं तो अब कुंद कुंद खुद समझते हैं कि नयों की चर्चा के बिना आगे समय सार समझना संभव नहीं है। और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ लिखा अमृतंदाचार्य ने, तो उसने भी शुरू शुरू में नयों की चर्चा की, और वह निष्ठा व्यवहार नयों की चर्चा की, चरणानुयोग का ग्रंथ है, क्यों अध्यात्म का ग्रंथ नहीं है वो, लेकिन चर्चा उन्होंने नयों की। टोडरमल जी ने सातवें अध्याय में कि नयों का ज्ञान नहीं होने की वजह से उनका शिष्य परेशान है, क्योंकि अपेक्षावाद माने नए बाद, तो सारा वो उन्होंने उसमें से उन्होंने विस्तार से खोला है ना। तो यहां ये शिष्य कहता है कि चारों प्रकार के जो व्यवहार नए थे इनका निषेध तुमने किया, तो पहले हमें बताया क्यों नहीं? अब ये ऐसे ही प्रश्न है कि ये सावन जब धोनी ही थी तो तुमने लगवाई क्यों? आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र हैं कि नहीं है, ये हम मां के पेट से सीख के नहीं आए थे, तुम्ही ने हमें तोते जैसा रटाया है कि आत्मा अनंत गुणों का अखंड पिंड है, पिंड क्या है, बस एक ही है, उसमें भेद ही है, रटाया का नहीं रखा है, गुण परे द्रिव्यम आचार्यों ने हमें बताया है, और हम वो ही जब पढ़ करके तुमसे सीख करके और कहने लग गए तो तुम ही कहने लगे कि इसमें दम नहीं है, ये पहले हमें पढ़ाया क्यों? इस शिष्य का प्रश्न है यहां। तो तुम्हारा जो एक तरकारी जो भगवान आत्मा है ना, जिसमें गुण भेद से भी पार है, तो वो ही बताते। तब आचार्य कहते हैं कि गुण भेद बताए बिना गुण भेद से पार कैसे बताते, पता लगता कैसे पार है। निश्चय व्यवहार पूर्वक निश्चय का अर्थ ये है, पहले व्यवहार से समझो और तब तो उसका निषेध करें। गुरुदेव की भाषा में कहूं कि व्यवहार को बेचारे को खड़ा तो होने दो अखाड़े में, फिर धुनाई शुरू करना, तुम तो खड़े ही नहीं होने देते हो, मैंने उसकी स्थापना तो करो। कि न्याय शास्त्र पढ़े जिन आप विद्यार्थियों ने, उन्हें देखो पूर्ण मत के में 20-20 पेज 25-25 पेज
पूर्व मत के खंडन में लिखे ना, आज परीक्षा में ईश्वर मीमांसा शुरू के 20 पेज ईश्वर है इसमें ही सिद्ध करने में आचार्य ने लगा दिया क्या तन्वय क्रम मारतंड में, तो और भी ज्यादा जगह घेरी है और वे सिद्ध कर रहे हैं कि आपको ही लगने लग जाए कि सचमुच ईश्वर है और अंत में इतना सके तदप्य सत ये भी झूठ है और फिर पूरी रामायण शुरू करी और हर तर्क का जवाब देकर उसका खंडन किया। तो पूर्व मत की स्थापना किए बिना उसका निषेध कैसे हो, तो व्यवहार की स्थापना किए बिना व्यवहार का निषेध क्या है। तो एक मैं बहुत अच्छा वाक्य बोलता हूं, ये जो अपना शरीर है ना ये अपना नहीं है, फिर सुनना, ये जो अपना शरीर है ना वो अपना नहीं है। ये पहले कह रहे अपना शरीर है और फिर कह रहे अपना नहीं है, तो हम कह रहे शरीर अपना नहीं है, तो पिछले खड़ा हुआ है ना किसका शरीर, गधे का शरीर तुम्हारा नहीं है कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं है, क्या शरीर तो इतने हैं ना, जितने जीव हैं उतने शरीर हैं संसार में, तो तुम शरीर से भेद विज्ञान करा रहे हो तो कौन से शरीर से भेद विज्ञान करा रहे हो, बोले असमझ है ना, स्त्री के शरीर से पुत्र के शरीर से। तो पहले इस व्यवहार की स्थापना करनी पड़ेगी कि ये शरीर तुम्हारे नहीं है और ये शरीर तुम्हारा है, इसका नाम है व्यवहार। कौन सा व्यवहार, उसका नाम अनुपरित असदूत व्यवहार। ने आप समझना क्या ना, एक मिनट में पहले तो ये आपको मालूम नहीं पड़ा इस वाक्य में, लेकिन प्रतिपादन भी हो गया और निषेध भी हो गया, ये जो शरीर अपना है वो अपना नहीं है, ये जो पत्नी अपनी है वो अपनी नहीं है। ये तुमको पत्नी अपनी नहीं है तो दुनिया की पत्नियां तुम्हारी नहीं है ये नहीं समझा रहे, उसे तो तुम मानते ही कहां हो अपनी, वो समस्या ही कहां है। लेकिन जिसे अपनी तुम मान रहे हो जान रहे हो और अपनेपन का व्यवहार हो रहा है, और अपनेपन का व्यवहार बेटा अभी भी करना, कल से छोड़ मत देना है? नहीं तो मेरा प्रयोजन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पत्नियां कहेंगी कि ने हमारे घर में झगड़ा करा दिया, अब ये आगे कहते कि तू मेरी नहीं है क्यों। तो पहले ये पत्नी अपनी है वो अपनी नहीं है, तो ये व्यवहार की स्थापना और ये उसका निषेध। तो आचार्य ने कहा कि देखो गाथा में बोला, जिस प्रकार अनारी व्यक्ति को अनारी भाषा के बिना समझाया नहीं जा सकता है, ऐसे ही व्यवहार की भाषा के बिना निश्चय का उपदेश संभव नहीं है। इसमें टीका बहुत सरल है और बहुत मार्मिक है, तो मैं टीका पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूं और फिर उसी एक एक बात पर अपन गंभीरता से विचार करेंगे। क्या लिखा, स्वस्ति शब्द से अपरिचित किसी मिलित, ये जो मैं पढ़ रहा हूं ना ये बिना पढ़े भी आपको बता सकता हूं, लेकिन पढ़ के बताना चाहता हूं, ये संस्कृत में पूरा उसका अक्षर अक्षर अनुवाद है। स्वस्ति शब्द से अपरिचित किसी मिलेच्छ, अब मिलेच्छ का अर्थ यहां लिखा है, क्या लिखा, अनपढ़, तो ये मैं समझ लेना कि भंगी मिलेच्छ है कि अंग्रेज मिलेच्छ है कि लंदन वाले मिलेच्छ है, मेरा मतलब समझ में आई ना आपकी, मैं ना समझ को, यदि कोई ब्राह्मण, अब ब्राह्मण माने पढ़ा लिखा व्यक्ति, देखो मिलेच्छ माने अनपढ़ और ब्राह्मण है पढ़ा लिखा, ये इसमें इस टीका की विशेषता है, नहीं तो तुम झगड़ा करा दो। स्वस्ति ऐसा कहकर आशीर्वाद दे, तो उसने आगे नमस्कार किया तो क्या स्वस्ति, पहले ऐसे ही आशीर्वाद देते थे, ख्याल में ना अपने मुंडाजों के द्वारा जो आशीर्वाद देने का सबके लिए शब्द नक्की है ना, वे भी धर्म वृद्धि रस्तु ऐसा है ना, यानी तुम धर्मात्मा तो हो ही, मैंने सम्य दृष्टि तो हो ही और अनुवृत्ति भी हो सकते हो, अब धर्म की उत्पत्ति नहीं धर्म की वृद्धि हो इसका आशीर्वाद दे रहे वे, धर्म की उत्पत्ति हो ऐसा नहीं कह रहे, धर्म वृद्धि रस्तु है ना। एक शब्द है स्वस्ति, ये स्वस्ति माने क्या होता है, कि अपनी अस्थि स्वाकी अस्थि, क्यों
लेकिन ये कहते हैं कि इस जगत में पर में हमने अपना अस्तित्व माना, इसलिए हमारा अकल्याण हो रहा है। और हम अपना अस्तित्व अपने में माने तो हमारा कल्याण होगा। तो ये तुम स्वाकी अस्थि कहते रहो तो काम नहीं चलेगा। तो ये कहेंगे अपना अविनाशी कल्याण हो, ये अर्थ इसका दिया। क्या तो अविनाशी क्यों लगाया? कि वो जो कल्याण जगत में, अच्छी नौकरी मिल जाना भी कल्याण में मानी जाती है, अच्छा मकान मिल जाना, दुकान मिल जाना, रुपया पैसा मिलना भी हमारा कल्याण कर दिया। क्यों? तो वो अविनाशी कल्याण हो जो कभी नष्ट नहीं हो, ऐसा उसका अर्थ है। अभी आप पूजन करते हो ना, और पूजन के पहले पढ़ते हो क्या, स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जन पुंगवाय, बोलते हैं नहीं? उपरांत में स्वस्ति श्री ऋषभ ना, स्वस्ति स्वस्ति श्री अजता संभवा, स्वस्ति स्वस्ति श्री संभवा, के पंडित में शर्म नहीं आती हो? भगवान के साथ ऐसा बोलते हो? अरे अजित नाथ जी बोलो, ये अजता अजित ही नहीं, क्यों? इसलिए कुछ क्या उबर वाइज क्या बोलते, डेढ़ डाला लोगों ने उसको बदल के ऐसा कर दिया, स्वस्ति श्री ऋषभनाथ जी, स्वस्ति श्री अजितनाथ जी, स्वस्ति श्री संभवनाथ जी। इन मारवाड़ियों से और क्या अपेक्षा की जा सकती है? इनके यहां तो हर चीज में जी लगाना, जैसे गुजरातियों में भाई लगाना है ना, हरेक में भाई, मेहसा जी के पांड्या जी राजस्थान में कोई बार बार राजस्थान, हर के साथ जी लगाना, समझे ना? कोई शब्द भी बोलेंगे एक वाक में तीन जी तीन जी तीन जी। और मेवाड़ की जानते हो, जो हुक्म जो हुक्म जो हुक्म, क्यों पता क्या नहीं होता? क्यों गुजरातियों के भाई किसी में भी भाई लगा दें, ऐसा भाई पांड्या भाई। तो ये कहते हैं कि वो जीव संस्कृत में नहीं है भैया, जीवी और संस्कृत में विभक्ति लगती है, तो अजित नाम का कोई शब्द ही नहीं है उसकी, जो मूल शब्द अजित है तो उसमें हमको अजिता अजतहु अजिता ऐसा बोलना पड़ेगा, अजितम वो जो तो 24 है ना, अजता अजते हुए अजता, तो उसमें 24 में अजित है कहीं, हे अजित आ जाएगा नसकेला, वहां विसर्गें हटेंगी और बाकी जगह तो विसर्गें लगेंगी, तो वो समझते गए पंडित जी ने मालूम कैसे बोल रहे, अब क्या करे, अब कोई वो ब्राह्मण स्वस्ति बोले, ऋषभो ना स्वस्ति स्वस्ति श्री अजिता संभवा, स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदना, क्या हो गया? स्वस्ति स्वस्ति क्या कहते हैं? बोलते स्वस्ति वाचन, त्रिलोक गुरुवे जिन पुंगवाए स्वस्ति, कि तीन लोक के जो गुरु हैं वो तीन लोक के गुरुओं में भी पुंगव हैं। पुंगव माने सर्वश्रेष्ठ, बोलते बने पंडित पुंगव माने पोंगा पंडित, पोंगा पंडित का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा पंडित, सर्वश्रेष्ठ। तो वो कहते हैं कि ब्राह्मण ने किसी मिलेच्छ को माने पढ़े हुए आदमी ने, बिना पढ़े हुए आदमी को ये बोला स्वस्ति, उसने नमस्कार किया तो क्या स्वस्ति, ये क्या कह रहा? अब जरा समझना इसमें, जो आचार्य की भाषा में अभी पढ़ूंगा, कि वो टकटकी लगाकर देखने लग गया, मेड़े की भांति आंखें फाड़ फाड़ कर, ऐसा लिखा है, मेड़े मेड़े समझता होता ना, भेड़ और भेड़ का बच्चा उसे मेड़ा बोलते हैं, छोटा सा वो आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है कि ये क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि ये कोई अच्छी बात कह रहे हैं, ये मेरे शत्रु नहीं लगते हैं, ये मेरे परम उपकारी महामित्र लगते हैं, और कोई बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, इतना समझ में आता है।
उस शब्द का अर्थ समझ में नहीं आता है, लेकिन इतना उसकी समझ में आया कि किसी आचार्य के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा स्वस्ति ऐसा शब्द कहे जाने पर जैसे कोई मिलेच्छ आंखें मेढ़े की भांति आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है कि क्या कह रहे, स्वस्ति का अर्थ समझ में नहीं आ रहा। तो इसमें लिखा कि अब वो तो संस्कृत का विद्वान था, और समझ लीजिए ये मारवाड़ी गुजराती था, कोई था जो भी होगा, अब वो आचार्य गुजराती मारवाड़ी भाषा जानते नहीं थे, क्यों? तो देखें स्वस्ति स्वस्ति, अब क्या कह रहे, क्यों? तो कोई दूसरा दुभाषिया आया और उसने कहा कि महाराज ये कह रहे हैं कि तेरा अविनाशी कल्याण हो, तेरा कल्याण हो, तू सुखी हो जा और ऐसा सुखी हो जा कि अनंत काल में फिर कभी दुखी हो ही नहीं। क्यों? कोई दूसरा हो और चाहे भाग्य से वे ही आचार्य गुजराती भी जानते हो, मारवाड़ी भी जानते हो, तो वे ही समझा दें, तो उन्हें समझाना तो पहले ही बोल देते ना उसी भाषा में, तो स्वस्ति स्वस्ति काय को बोली, कि महापुरुष महाभाषा में ही बोलते हैं, यदि समझाना पड़े तो मिलेच्छ भाषा को जानते हो तो मिलेच्छ भाषा में समझा दें, लेकिन वो मिलेच्छ भाषा में नहीं बोलेंगे, ख्याल में है ना। तो जब उनने कहा कि ये कह रहे तेरा अविनाशी कल्याण हो, तो उसे बहुत आंखों में आंसू आ गए, गदगद हो गया, हाँ इतनी बढ़िया बात ये कह रहे और मैं समझ नहीं रहा था। तो ये उदाहरण दे करके तो कहा, कोई आचार्य ने जब ये कहा कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा आत्मा शब्द बोला, तो उसकी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उनके हाव भाव से, उनके करुणा से भरे हुए चेहरे से उसकी ये समझ में आया कि ये कोई बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं। अपने गुरुदेव के साथ ऐसा था क्या नहीं था कि उनका प्रवचन सुनने लोग आते थे और एक घंटे तक सुनते कुछ नहीं थे, उन्हें देखते रहते थे, है ऐसा चेहरा कोई दुनिया में? ये जो टीवी सिनेमा वाले हैं ना, ये अपने को बहुत सुंदर सुंदर मानते हैं, एक सेकंड ऐसे खड़े रहे एक चेहरा को तो सब हुल्लड़ मचा देंगे, उन्हें बदलना पड़ते हैं, कई चेहरे लाना पड़ते हैं। क्यों? आपको एक घंटा बांधे रखना हो यहां ना, तो 50 चेहरे आते हैं, हैं? और 50 नाचना अटकना भटकना है, वे क्या सुंदर हैं, उनसे सुंदर तो हम हैं कि एक घंटा एक पुराना चेहरा तुमको दिखाते रहते हैं और तुम मेरे की बात देखते रहते हो। क्यों? तो आचार्य महाराज के वो करुणा जो चेहरे से झल रही थी, समझना, कब तक ही लगा करके देख रहा और आत्मा आत्मा कह रहे तो समझ में कुछ आ नहीं रहा। तो वे तो इतने निश्चय में मगन थे कि वे तो आत्मा बस आत्मा आत्मा। अपने गुरुदेव के पास कई लोग जाते थे, एक घंटा सुन के आते थे कि क्या क्या समझा, कि ये समझा कि ये है तो कोई महापुरुष। इतना समझ में उसके गारंटी से आता था, और कोई अद्भुत बात कह रहा है इतना समझ में जरूर आता था। वो बिल्कुल कितना उदाहरण कितना सटीक बैठता है। हजारों लोग इस देश में अभी भी जिंदा हैं, और जो उनसे पूछो तो पहली दफे हम गए थे तो हमारी समझ में कुछ भी नहीं आया, लेकिन इतना समझ में आया कि ये कोई अद्भुत महापुरुष है, जो कोई अद्भुत जगह है, कोई बहुत गजब की बात कहता है जो हमारी समझ में नहीं आ रही। यानी उनकी पात्रता और अपनी अपात्रता समझ में आ जाती थी। क्या? तो वो कहते हैं कि इतना समझ में तो पहले ही आ गया था उसको, किसको? वो मेढ़े की भांति देखने वाला। तो ऐसा उदाहरण देकर के वो ये कहना चाहते हैं, क्या बोलते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें, हिंदी भाषा में नहीं बोल सकते, बड़े पंडित आए, अपना पांडित्य दिखाते हो, ऐसा कुछ नहीं, गला पकड़ने की कोशिश नहीं की। ऐसा पात्र शिष्य हो तो उसे आत्मा की बात समझ में आएगी। ये हमारी समझ में आत्मा की बात क्यों नहीं आ रही है? तो पंडित जी कहते हैं देख लो, मिलान कर लो, ऐसी पात्रता है कि नहीं है, बस इसलिए नहीं आ रही समझ में। नहीं, बहुत सच्ची घटना सुनाता हूं। एक हम सोनगढ़ गए थे अशोक नगर से, करीब 45 साल पुरानी बात होगी। तो वहां पर एक भाई थे हमारे, अभी भी हैं वो, मिश्रीलाल जी नाम है उनका। तो वो इतनी लंबी लंबी ऐसी मूछें रखते थे। हमारे साथ सबसे पहले सोनगढ़ गए थे हमारे साथ कौन बोली बोली वहां मिश्रीलाल नाम था, अभी भी हैं वो, अब ब्रह्मचारी बन गए, मूछें मरवा ली जब से। सुनो, इतनी लंबी लंबी मूछें। अब हम रहे 3-4 जन रहे, गुरुदेव का प्रवचन सुने तो मेरे से पंडित जी को समझ में नहीं आता, पंडित जी को समझ में नहीं आता। तो मैंने कहा मैं चुप रहा। तो मैंने 5वें दिन गुरुदेव की तरफ देखना जरा कम करके उनकी तरफ देखा, देखता रहा। तो वे बराबर मूछों पे ताव देते रहे। सच में सच्ची घटना बोल रहा हूं मैं। इस 58 सन की होगी, सन 58 समझते हैं, 58। तो मैंने कहा मिश्रीलाल जी आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा है, मेरी समझ में आ गया। आप मेरी बात मानो तो समझ में आएगा। बोले क्यों साहब, को बताओ। मैंने कहा ये मूछे मुड़वा दो। तो ये हंसने लग गए, बहुत कहा क्या बात करते हो। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल सच्ची बात यह है, आप मूछे आपका बहुत उपयोग खाती हैं और निरंतर उन्हें संभालने का आपका विकल्प आता है। जैसे महिलाएं अपनी माथे की साड़ी, ना उन्हें ढकना है ना नहीं ढकना है, बस बार बार बस उनकी समझ में भी जाएगा, क्योंकि साड़ी संभाले के आत्मा संभाले। अरे परमानेंट जैसा करना हो कर लो, यहां गले में डाल लो, माथा पूरा खोलना, पूरा खोल लो, पूरा ढकना, हमें कोई ऐतराज नहीं है, चाहे जैसा कर लो, लेकिन ये 24 घंटा उसी संभाल। ये जो लंबे लंबे बाल वाले, ये क्या, ये तो भी इनकी समझ में नहीं आई। सचमुच उन आदमी ने उसी दिन मूछे मुड़वा ली और दूसरे दिन कहा कि पंडित जी आप समझ में आ रहे हैं। वो आदमी अभी भी जिंदा है, आप पूछ सकते हो जाकर के। अब आप भी, आपकी समझ में नहीं आए तो देखना कि क्या कारण है, आपको अपने में मिलेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो की पात्रता कैसी होनी चाहिए, वो सर्वाधिक महत्व उस वाणी का होना चाहिए, उस गुरु का होना चाहिए, क्योंकि समझने में ये बहुत बड़ा कारण है। समझने के लिए कैसा पात्र चाहिए, इसका वर्णन इस गाथा में आ गया है। क्यों, अब देखना, इसमें 5 लब्धि आ गई। कैसी लब्धि आ गई, कि जब वो बात आई और उसकी समझ में नहीं आई तो उसने गुस्से में ये भी कहा कि सबकी समझ में आए, ऐसी बात क्यों नहीं बोलते, ये इतनी ऊंची ऊंची भाषा बोलते हैं, आत्मा फात्मा लेके बैठ गए, सबकी समझ में आए ऐसी बात क्यों नहीं कहते हो, क्यों? मेरे पास यहां आए लोग, यहीं की बात है, 2-4 दिन पहले की, कि साहब वो टीवी पे आपका आता है तो बहुत कठिन आता है, तो हमारी समझ में नहीं आता, थोड़ा सरल करो ना। मैंने कहा हमने सरल भी किए थे, टीवी के लिए बनाए थे 200 ऐसी शेड यहां बनाए थे, लेकिन उसमें वो मजा नहीं आता था। तो मोटानी जी ऐसे हमसे ले कहते थे कि ये नहीं, आपका तो जो हम प्रश्न सामने सुनते हैं वो मजा आता है, वो नहीं आता है। आप जैसे कई लोगों ने कहा, तो मैंने कहा भैया वो सरल फरल में नहीं आएगा, सरल तो बहुत बोलने वाले हैं, हमारा तो टीवी पे भी लोग यही सुनना चाहते हैं और उनकी समझ में नहीं आता, तो इतना तो समझ में आता है कि ये कोई अद्भुत बात कह रहा है ना, तो धीरे धीरे उसकी समझ में आएगा। तो वो क्या हुई, कौन सी गुस्सा नहीं आया, तो कौन सी लब्धि हुई, विशुद्धि लब्धि। और फिर जब दूसरे ने समझा दिया कि ये कह रहा है कि अविनाशी कल्याण हो तुम्हारा, तो समझ में आ गया, तो कौन सी लब्धि हुई अभय जी, सयोपम लब्धि। कि समझने की पात्रता तो है, तो सिर्फ भाषा का दिक्कत का प्रॉब्लम है। मैंने ज्ञान में ये ताकत है कि वो समझ सकता है, लेकिन भाषा की प्रॉब्लम है। तो समझी, और फिर गुरु ने समझाया कि अविनाशी कल्याण हो, तो वो उस देशना को उसने सुना। फिर आगे लिखा है इसमें कि उसके आंखों में अश्रु की धारा बह पड़ी। इसका मतलब उस जो तत्व उसने सुना और समझ में आया, उससे वो गदगद हो गया, उसकी तीव्रतम रुचि उसमें जग गई, तो प्रायोग लब्धि हो गई और आनंद अश्रु आनंद मग्न हो गया, तो कहीं लब्धि हो गई, हो गया ना सिर को। तो पांचों लब्धियां बताई, शिष्य की पात्रता बताई और गुरु का प्रतिपादन बताया। ये आदमी गाथा में कि वो व्यवहार मार्ग से वो दूसरे को समझाना पड़ा या गुरुजी को उस भाषा में उतरना पड़ा, इतना तो गुरुजी को करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं भाव होता है वक्ता का और भाषा होती है श्रोता की, क्योंकि श्रोता की भाषा में नहीं बोलोगे, ख्याल में आई ना, श्रोता तो फिर श्रोता की कुछ नहीं समझ सकेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई गुरुजी जो बिल्कुल प्योर संस्कृत के पाठी हैं, वो हिंदी बोलने में उन्हें ऐसा लगता कि हमारी जमाना पवित्र हो गई। ऐसा पहले जमाने में था मालूम आपको, जो लोग बोलते थे, अरे है ना, हाँ ऐसा है, बोलने में समझ गए ना। तो वो आचार्य वहां उतर गए, मिलेच भाषा में आ गए, मिलेच भाषा बोलने लग गए, उन्हें समझाने, मिलेच्छों को समझाने के लिए। समय हो गया, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जैनियों की जो भाषा है प्राकृत, उन आचार्यों ने प्राकृत में लिखा, वो ब्राह्मण पंडितों ने संस्कृत में लिखा। तो वो लोग क्या कहते हैं कि ये तो मिलेच्छों की भाषा है और ये बहुत हीन शब्द बोलते हैं। और मैं इसका उदाहरण देता हूं, कालिदास ने अपने जो नाटक लिखे उनमें जो महान पात्र थे उनसे संस्कृत बुलवाई। वो जो घर के नौकर चाकर थे, रसोईया थे, झाड़ू लगाने वाले थे, घोड़ों को संभालने वाले थे, उनके मुंह में प्राकृत डाली। क्या मतलब, ये प्राकृत भाषा फोर्थ क्लास के लोगों की है, ये विद्वानों की भाषा नहीं है। और जैनाचार्यों ने प्राकृत में लिखा, तो जैनाचार्य ये तो क्या जानते ही नहीं संस्कृत संस्कृत, इसलिए प्राकृत में बोलते हैं, ऐसा वो मान के निंदा करते थे। और जैनाचार्यों का उद्देश्य था कि हमें इन लोगों तक पहुंचना है तो इनकी भाषा में बोलना पड़ेगा। लोगों ने कहा ठीक है, उस भाषा में बोलने लग गए, तैयार हो गए। लेकिन आचार्य कहते हैं कि हमने तुमसे बेटा मिलेच्छ भाषा में बोलने के लिए कहा है, मिलेच्छ मत हो जाना। क्यों, तुम उन्हें समझा देना मिलेच्छ भाषा में, लेकिन अभी तक तो वे अभक्ष भक्षण भी करते होंगे, अंशना पानी भी पीते होंगे, तो उनके साथ वो अंशना पानी मत पीते लेना। गांधी जी ने कहा ना कि जनता तक पहुंचना है तो जनता की भाषा में बोलना पड़ेगा, और बोले और वैसा भेष अपना लिया है। और ये कुछ लोग फिर नेता, मैं कहना नहीं चाहता हूं, आप समझ लीजिए कि उनके हमें जाके खाने लग गए। समझ रहे ना क्या कह रहे हूं, क्यों, क्यों इसके बिना उन्हें अपनापन नहीं लगेगा। हमारी मुख्यमंत्री जाती हैं, कहीं भी गांव में जाती किसी के यहां, और उसी के यहां कोई रोटी का टुकड़ा लेके वहीं खा लेती है। हमारी रोटी का टुकड़ा मुख्यमंत्री जी ने खा लिया, वोट पक्के। राबड़ी खा ली, कहीं ये खा ली, यूं चले गए। ये वो आचार्य जैसे नहीं, ये तो ठगिया लोग हैं, ये तो तुम्हें लुटेरे हैं, लूटने आए हैं, समझे ना। वो कहते मिलेच्छ भाषा में बोल लेना, लेकिन मिलेच्छ मत हो जाना, ये इसमें आने वाला है। अब बाकी चर्चा अपन कल करेंगे।